الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال حسين بن علي إن الدائي ابن الدائي قد ركض بين اثنتين بين السلة والذلة هيهات من الذلة میرے مولا حسین جن کا نام ہماری جان ہماری روح ہماری توانائی ہماری تاریخ ہمارا سب کچھ ہم اس نام سے زندگی پاتے ہیں جس نے موت کو ہرایا جس نے ذلت کو ذلیل کیا جس نے عزت کو عزت عطا کی فرماتے ہیں اس بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہ کھڑا کر دیا بین السلت والذلہ میں ذلت کی زندگی گزاروں یا عزت کی موت بناؤں مگر ہے ہاتھ میں نت اللہ جان لو حسین ابن علی سے ذلت دور ہے میں سب سے پہلے مفقود ناپید لاپتہ اٹھائے ہوئے گمشدہ اغوا شدہ دانستہ نادانستہ جن کا مجھے علم ہے اور جن کا مجھے علم نہیں کہ کون لے گیا ان سب کے خانوادوں کو سلام پیش کرتا ہوں ان سب کے بچوں کو اپنی گردن جھکا کر دونوں ہاتھوں سے آداب و تسلیمات کہتا ہوں ان کے بزرگوں کے لیے دست بوس ہوں ان کے خانوادوں کے لیے خادم ہوں آپ کا جرم کیا ہے آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ مولا علی کا نام لیتے ہیں آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں پہ علم لگاتے ہیں آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ علی و ولی اللہ پڑھتے ہیں میں آپ سب کو اور آپ کے ساتھ شریک یہاں تمام احباب جو اس وقت موجود ہیں جو پہلے تھے اور کچھ دیر کے لیے گئے ہیں اور پھر آ جائیں گے اور یہ کل قافلہ آگے بڑھے گا میں آپ کے ساتھ اس قافلے میں کچھ لوگوں کو شریک کرنے کا دعوت دینے آیا ہوں پاکستان میں کراچی میں ہی مسنگ پرسن اور گمشدہ افراد نہیں ہیں پنجاب اور میں بالا تر بات کرتا ہوں میں اور آپ علی کے ماننے والے ہیں اپنے دماغوں کو عالی کیجئے اپنی سوچ کو اونچا کیجئے میں دعوت دینے آیا ہوں آ جائیں وہ بلوچ برادران جن کے لوگ گم ہیں آ جائیں وہ پنجابی برادران جن کے لوگ ناپید ہیں ہم آپ کو میزبانی کرتے ہوئے دعوت دے رہے ہیں دسترخوان حسینی ہوگا اور اس چھتری کے نیچے ہر مظلوم ہوگا پاکستان کی سرزمین مظلوموں کی اور خاص طور پر اہل بیت کے چاہنے والوں کی سرزمین میں اپنے محترم سننے والوں کو مختصر سی اپنی تاریخ دہرانا چاہوں گا آپ کسی دور میں بھی ذلیل ہو کر نہیں رہے آپ کسی دور میں بھی حیثیت کھو کر نہیں رہے آپ کسی دور میں بھی گم نہیں رہے لاکھوں میں بھی یہ علیحدہ نظر آنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو اکیلا کنڈھے کلابے ڈال کر بندے چٹیا چھوڑ کر ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر راستوں میں اور کوچے بازاروں میں یہ کہتا ہوا گزرتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، اور وہ وقت شروع ہو چکا ہے کہ اب ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ لبیک یا حسین،
سب سے پہلے تو تمام متاثرین کے خانوادوں کو کہ جو یہاں اپنے گھر کو چھوڑ کر اس رستے پر آ کر بیٹھے ہیں، اس جگہ پر آ کر بیٹھے ہیں، ان سے میں اپنے دل، اپنی کیفیات قلبی، اپنی محبت، اپنا پیار، اپنا سب کچھ ان کے نام کرتے ہوئے انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کو جو ان کے ساتھ معاون ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلی گفتگو، جس کا میں آغاز کر چکا ہوں کہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ذلت کی زندگی نہیں گزاری، ہم نے ہمیشہ عزت کی زندگی گزاری ہے۔ وہ تاریخ عرب دنیا کی ہو، وہ تاریخ فارس کی دنیا کی ہو، وہ تاریخ بر صغیر کی ہو، ہم نے ہمیشہ جنازے ضرور اٹھائے ہیں مگر ان جنازوں پہ پھول برسائے ہیں۔ ہمارا دشمن پاکستان میں بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا میں بے وقوف ثابت ہوا، ویسے میں پاکستان میں اور بالعموم پوری دنیا میں اپنا دشمن کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ شیعوں کا کوئی دشمن نہیں ہے، شیعوں کا دشمنی کرنے کے لیے، شیعوں سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں تھی۔ ہر آدمی کو اپنا دشمن نہ مانیے گا۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، اگر اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھیوں کو بھیج دیا ہوتا تو وہ گویا ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہوتا۔ اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے، ابابیل کا لشکر بھیجا ہے جو ان کی ذلت تھی۔ ہمارا دشمن پاکستان میں اتنا بڑا بے وقوف ثابت ہوا ہے، وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ کسی طور بھی ہم نے تاریخ کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا نہیں ہونے دیا، ہلکا نہیں ہونے دیا، کمزور نہیں پڑنے دیا، ہمیشہ ہم عزت اور آبرو کے ساتھ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے کربلا کی تاریخ ہے، ہمارے سامنے امام حسین کا وہ کڑی الجوان ہے، امام حسین کا وہ ننا بچہ علی اصغر ہے، امام حسین کی وہ سکینہ ہے، امام حسین کی وہ بہن زینب ہے۔ کون سا کردار ہے کہ جو کربلا میں امام حسین نے ہمارے لیے قرار نہیں دیا؟ میں چند جملے اپنی گفتگو کے اختتام پہ مسائل کو پڑھوں گا، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا حصہ میری گفتگو کا، اپنے آپ سے میں نے مختلف فوروموں پر اپنے آپ کو، میں نے سے مراد قوم کے ذمہ داروں کی بات کر رہا ہوں، اپنی کچھ کمزوریوں کا اظہار کیا۔ میں پیٹتا آ رہا ہوں، روتا آ رہا ہوں، کئی مرتبہ سنی رات کی جمی صاحب سے کہا تھی کب تک ہم گورنر ہاؤسوں کے رستوں کو ناپتے رہیں گے، کب تک ہم وزیر اعلیٰ کے گھر تک جاتے رہیں گے، کب تک ہم ان وزیروں کے دروازوں پہ جوتیاں توڑتے رہیں گے، کب تک ان کی چائے کی پیالیوں کو ہم مزے لے کے پیتے رہیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو عزت دلوانی ہے، وہ وقت بہت قریب ہے کہ یہ آپ کے گھر چل کر آئیں گے، آپ کو ان کے گھر جانا نہیں پڑے گا۔ میری قوم کے بعض افراد شاید اس گمان میں تھے کہ وہ اس انداز سے قوم کا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہوئی، اچھی بات ثابت نہیں ہوئی، یہ کامیاب بات ثابت نہیں ہوئی۔ ہمیں اپنے وقار کو بڑھانا ہے، اپنے عزت کو بڑھانا ہے۔ عزاداری ہم کرتے ہیں، خرچہ ہم کرتے ہیں، پیٹتے ہم ہیں اپنے آپ کو، جان پر ہم کھیلتے ہیں۔ تمہارے ہاؤسوں میں بیٹھ کر طے کریں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، پروگرام تو ہمارا ہے نا، ایام تو ہمارے ہیں نا، دکھ اور درد تو حسین کا ہمیں ہے نا، मातमी और अजादार तो हम हैं ना इमाम हुसैन के, तो आपके हाउस में बैठकर हम क्यों फैसला करेंगे? आप आइए हमसे पूछिए कि आप हमारी क्या खिदमत कर सकते हैं। रात को आप एक फैसला करते हैं, दूसरे दिन उस फैसले को बदल देते हैं। जैसा कि फरमाया गया मेरे बुजुर्गों ने, मैं आपको बताता जाऊं, सात रुकनी कमेटी जो तश्कील पाई है वही कमेटी है बस और बस। चार रुकनी अफराद हैं मुतासरीन के खानवादे से जो पहने हैं हमारी, और तीन अफराद जनाब मोहतरम सगीर आबिद रिजवी साहब, जनाब मोहतरम सुहेल साहब और जनाब मोहतरम अरशद रिजवी साहब, राशिद रिजवी साहब। खुदा ना खास्ता ये गलत भी कहे ना तो मुझे इनकी बात के पीछे खड़े रहना है, तब जाके मैं इज्जत कमाऊंगा। लिहाजा इस कमेटी के अलावा जो जैसा फरमाया गया, मैं मेरे लिए इज्जत है, मेरे लिए इफ्तखार है कि मैं पॉलिसी बयान आपके सामने बयान दे रहा हूँ। ये हमारी सात रुकनी कमेटी है, यही हमारा हमारे आखिरी तक फैसले करेगी और ये इस काफिले को लेके चलेगी। अब मैं आपको बताऊं ये काफिला कहाँ जा रहा है। ये काफिला यहीं से बैठकर पूरी दुनिया को कॉल देने जा रहा है। बुलंदर सलवात पढ़ेगा। हर काम का एक तरीक़ेकार होता है, हर तहरीक का एक तरीक़ेकार और उसके मरहले होते हैं। मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर तहरीकें आगे बढ़ती हैं। कल से ज्यादा आज आप यहां मौजूद हैं, कल आज से ज्यादा मौजूद होंगे। ऐलान कीजिए कि यहां से लेकर वहां तक मुख्तलिफ लोगों की जानिब से लोगों की खिदमत के लिए पानी, चाय, शरबत, खाने की सबीलें लगाई जाएंगी। कौन है जो अपना रिस्क बढ़वाना चाहता है वो यहां आ जाए मजलूमों के साथ, और आवाज दीजिए उन लोगों को जो अब तक यहां तक नहीं पहुंचे हैं। शायद मेरी गुफ्तगू को मुकम्मल होगी तो वो लोग भी जो इस वक्त शुबहे का शिकार हैं उनके शुबहात बरतरफ हो जाएंगे। ये तहरीक आगे बढ़ने जा रही है। पॉलिसी के मुताबिक जो ये सात रुकनी कमेटी तय करेगी कि कल कराची के कौन कौन से इलाकों में, परसों कौन कौन से इलाकों में, या परसों से कौन से इलाकों में, और उसके बाद सिंध के कौन से शहरों में, और फिर पंजाब के कौन से शहरों में। हम सांस लेते हैं तो पाकिस्तान सांस लेता है। जाम कर देंगे इस मुल्क को। ये तहरीक अभी पहले मरहले में मुनज्जम हुई है आज जाकर। जैसा कि फरमाया गया कि एहसासात और जज्बात का इजहार होता रहा, वो उनके जाती एहसासात और जज्बात थे जो बहरहाल काबिल कदर हैं, काबिल तारीफ हैं, और उनको अच्छी निगाहों से देखा और उन्हें अच्छे कानों से सुनने की ज़रूरत है। ये मरहला मुकम्मल हो रहा है और ये अब तहरीक आगे बढ़ेगी। मेरी गुफ्तगू का दूसरा मरहला, हम बैठे हुए हैं इस वक्त दो कदम पर रही से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अलवी के घर के करीब। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या डॉक्टर आरिफ अलवी ने आपके अजीज़ों को उठवाया है? क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आपके लोगों को उठवाया है? आप यहाँ क्यों आए? और क्या इनके हाथ में है یعنی یہ کہہ دیں گے تو چھٹ جائیں گے؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو تو جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دینا چاہیے۔ لیکن میری بات سنیں، لیکن کیونکہ بات روشن ہے، واضح ہے کہ بعض ایم آئی اور آئی ایس آئی اور آئی بی رینجرز اور پھر پولیس، تو بہرحال جی، تو ان اداروں، یہ تو واضح ہوگی بات، سامنے آ گئے، ریکارڈ پر آ گئی یہ بات کہ کون لے کر گیا ہے، کس کے پاس ہے، مگر آپ ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ آپ کو تو کسی رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے بیٹھنا چاہیے تھا، کسی آئی ایس آئی کے دفتر کے سامنے بیٹھنا چاہیے تھا، وہاں کیوں نہیں گئے آپ؟ کیوں نہیں گئے آپ؟ اس لیے نہیں گئے، آپ اس لیے وہاں نہیں گئے کہ ریاست کا سربراہ آئینی اور قانونی طور پر پاکستان کے موجودہ سیاسی ڈھانچے میں اگر کوئی ریاست کا سربراہ ہے، یعنی فوج پر بھی، ریاستی اداروں پر بھی، فورسز پر بھی، لا انفورسمنٹ اداروں پر بھی اگر کوئی سربراہ ہے تو وہ صدر مملکت ہے۔ یہ ہماری قوم کی سمجھداری، ہمارے شخصیات کی معاملہ فہمی اور ہمارا جمہوری پسند مزاج، جمہوریت پسند مزاجی ہے، معقول انداز سے، عاقلانہ انداز سے اپنے حقوق کی بحالی کا ہمارا طریقہ کار ہے۔ ہم پاکستان کے بانی بھی ہیں اور پاکستان کی بقا کا ذریعہ بھی ہیں۔ ہم سے زیادہ پاکستان کا درد شاید ہی کوئی رکھے گا۔ آپ میں سے کتنے ہی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے اپنے بڑوں سے پوچھتے اور بتایا ہوگا آپ کو اپنے بڑوں نے۔ خود میرے نانا آخری ایام میں ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے 3 سگے بھائیوں کے گلے کٹتے ہوئے دیکھا تھے۔ پاکستان ایسے بنا ہے۔ میرے ایک بزرگ تھے جو جناب صغیر عابد صاحب کے بھی بزرگ تھے، میجر علی عباس کا آدمی صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 3 سیدانیوں کے ساتھ جو عصمت دری کی گئی اور ان کی 2 بہنوں نے خود کو بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور کنویں سے وہ باہر نہیں آئیں، ان کی میتیں بھی باہر نہیں آئیں۔ ہم نے پاکستان، ہمارے بڑوں نے پاکستان ایسے بنایا ہے۔ یہ تو صرف میں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ یہ پاکستان بنا کیسے ہے۔ ہم کسی طور پر بھی، وہ نعرہ ہمارا نعرہ نہیں تھا جو بلوچستان میں لگایا گیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے فلاں ہے فلاں ہے، ہمارا نعرہ نہیں تھا۔ ہم پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کے حفاظتی اداروں کو دل سے دعا دیتے ہیں، مسلوں پر بیٹھ کر ان کی توانائیوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے ریاستی اداروں کے لیے، ہم پاکستان کے سرحدی محافظوں کے لیے جتنا درد ہم رکھتے ہیں اتنا ہی شاید کوئی رکھتا ہو۔ جتنے لاشیں ہم نے اس ملک میں اٹھائے، جتنے دھماکوں کا سامنا ہم نے کیا، کوئی اور کرتا تو اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا، وہ اپنے مذہب کا نام چھوڑ دیتا، وہ اپنے نام تبدیل کر دیتا، مگر الحمدللہ کوئی ہم سے پوچھے کہ اس تکلیف میں ہمیں مزہ کتنا آیا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جتنی مشکل بڑھتی ہے اتنا ہی مشکل کشا سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس تکلیف میں، ہمیں معلوم ہے کہ جو تکلیفیں ہم نے اٹھائی ہیں وہ تکلیفیں شاید ہی کوئی اٹھاتا، اور شاید کوئی اٹھاتا تو اس کا کیا حال ہوتا، لیکن الحمدللہ ہم ان جنازوں پر بچوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ ریاستی ادارہ، یہ ریاستی ادارے، یہ حفاظتی ادارے، ہم صدر مملکت کے قریب آ کر اس لیے بیٹھے ہیں۔ اگرچہ مجھے تعجب ہو رہا ہے، مجھے آج بھی کچھ سیاسی شخصیات سے بات ہو رہی تھی، یہ تو اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، یہ تو تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ آپ صدر ہونے سے پہلے تو انسان ہیں نا، آپ صدر ہونے سے پہلے تو کراچی کے شہری ہیں نا، صدر ہونے سے پہلے تو آپ مسلمان ہیں نا، صدر کب تک رہیں گے آپ؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر آپ کے یہی حلیے رہے تو 5 سال بھی زندہ رہیں گے آپ۔ یا लिहाजा आपको तो अखलाकी तौर पर कम से कम रब्ता करना चाहिए था। आपकी कोई घर में खातून तो होंगी, आपके घर में कोई बेटी तो होगी, आपकी कोई पोती तो होगी, आपका कोई पोता तो होगा, आता इन्हें चाय पिलाने के लिए। लेकिन नहीं, हमें आपकी चाय नहीं चाहिए, हमें आपका पानी नहीं चाहिए। हमें आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर और आकलाना अंदाज से इस जगह पर आके बैठे कि हम अगर वहां जाते तो पाकिस्तान से बगावत शुमार की जाती। हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान, जिसे हम अपना खुला दुश्मन मानते हैं, मैं फिर वाजे करूं, हिंदुस्तान की आवाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे जब हम अमरीका मुर्दाबाद कहते हैं तो अमरीका के शहरियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अमरीका की हुकूमत की पॉलिसियों से हमारी मुखालिफत है। ऐसे ही जब हम हिंदुस्तान की मुखालफत में अगर कोई बात करेंगे तो हिंदुस्तान का शहरी हमें अजीज है, वहां की पॉलिसियों, वहां की उनके जो तरीके हैं उस पर हमें इख्तलाफ है। अगर हम किसी और जगह पर जाके बैठते, हम अगर कहीं और जाकर मुतालबा करते तो हमारा दुश्मन मुल्क खुश होता। हम अली के चाहने वाले हैं। अली उसे कहते हैं जिसने 24 साल तक हुकूमत छोड़ी ताकि मुसलमान मजबूत रहे, दुश्मन फायदा ना उठाने पाए। हमसे ज्यादा सियासत और हमसे ज्यादा हिकमत शायद ही किसी के पास हो। यहां इसलिए आकर बैठे हैं, आप सरबरा हैं रियासत के। शायद मेरी आवाज इस वक्त, और यकीनन मेरी आवाज इस वक्त कहीं सुनी जा रही है, खुद मुझे मालूम है। कल एक मुलाकात होने जा रही है सदर मुमलिकत से, हुकूमत के ही एक हमारे अजीज की, और उम्मीद है कि वो इस गुफ्तगू के बाद अपनी पॉलिसी को मुरतब करेंगे और जल्द से जल्द आए। मगर मैं ये भी बता दूं आपको कि जब वो यहां आकर, उन्हें आना होता, अब तक तो मैं ये सोच रहा था कि वो टेलीफोन पर बात भी कर लें तो शायद ठीक है, लेकिन नहीं है, अब उन्हें आना होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अब यहां से जाना नहीं होगा। से कितने कितना क्या जानते हैं, लेकिन मैं जब बात कर रहा हूं तो सदर मुमलिकत से हमारी मुलाकातें भी हैं, वजीर आजम से भी हमारी मुलाकातें हैं, मगर वो मुलाकातें मैं एक जुमले में उन्हें धो रहा हूं ये कहकर कि मैं जिस कुर्सी पर बैठता हूं मिंबर, उससे ऊंची कुर्सी कोई नहीं है। लिहाजा मुझे पहले मौला हुसैन को खुश करना है, और मौला हुसैन मुझसे राजी होंगे तो फिर मौला हुसैन से जैसे सारी दुनिया अब राजी हो गई। उस वक्त में तो राजी नहीं थे ना, लोग कह रहे थे क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब सब हुसैन हुसैन कर रहे हैं। उन्हें आना होगा, मगर उनका आना भी काफी नहीं है, उनका आना भी काफी नहीं है। जिन इदारों के पास हमारे अफराद हैं उनके जिम्मेदार भी उनके दाएं बाएं आके बैठेंगे, और फिर तय पाएगा कि वो किस तरीके से हमारे जवानों को, हमारे लोगों को, हमारे अफराद को मंजर आम पर लेकर आते हैं। मैं बात की वजाहत कर दूं, हम अली के चाहने वाले हैं। मौला की वसीयत यह है, कूना लिताली में खसमा वलिल मदलू में होना। ऐ मेरे हसन हुसैन, मेरी वसीयत पहुंचा दो मेरे चाहने वालों तक, हमेशा जालिम के दुश्मन रहना और मजलूम से प्यार करना। शियों का अलिफ बे है ये जो मैं बयान कर रहा हूं, शियत की अलिफ बे है। हम जालिम से नफरत करते हैं और मजलूम से प्यार करते हैं। जालिम जालिम है, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कराची का हो, बाहर का हो, सुन्नी हो, शिया हो, जालिम जालिम होता है, मजलूम मजलूम होता है, चाहे सुन्नी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे शिया। मजलूम मजलूम है, जालिम जालिम है। हम ये बात वाजे करना चाहते हैं, हम ये नहीं कहने आए कि आप, मुझे मालूम है कि आपकी क्या मुश्किलात हैं। अगर शियों के 64 अफराद को हमने छोड़ दिया तो वो 1000 अफराद जो बलोचों के हमने उठाए हुए हैं वो वहां कैसे छोड़ेंगे, वो कहीं धरना देके बैठ जाएंगे। पहली बात तो ये कि हमें ये एजाज हासिल है कि हम लोगों को हिम्मत दिलाते हैं, लोगों को मुर्दा नहीं बनाते हैं, हम लाइन देते हैं। लोगों की क्यादत करने वाले लोगों को शिया कहा जाता है। मुझे अंदाजा है कि आपके पास जो उज्र तराशियां हैं वो इसी तरह की हैं। आप फरमाएंगे कि अगर हमने इनके इन अफराद को छोड़ दिया तो फिर हम बलोचों के 1000 अफराद को कैसे छोड़ेंगे। फिर कराची के अंदर बहुत सारे सियासी लोग, सियासी जमातों को लोग मिसिंग पर्सन का उन्वान रखते हैं। इसी तरह और मजाहिब और मकातिब फिक्र के लोग मिसिंग पर्सन का उन्वान रखते हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप इन्हें अदालतों में पेश करें, आप इनके ऊपर जो आपका उन्वान कानून शिकनी है वो इन पर जाहिर करें, पेश करें, इन्हें बताएं इन्होंने किया क्या है। मैं दो माओं को कराची में जानता हूं जो रोते रोते मर गई मगर उनके बच्चे नहीं आया अभी तक। कौन सी इंसानियत है, कौन सा इंसाफ है, कैसी तहजीब है ये? मैं पाकिस्तान की फौज में मौजूद, पाकिस्तान के रियासती इदारों में मौजूद खून अली के चाहने वालों से भी कहूंगा कि आप अपने बड़ों से बात करें, ये आपके जो बैज लगे हुए हैं, ये जो आपको सितारे लगे हुए हैं, ये जो आपको अच्छी अच्छी वर्दियां मिली हुई हैं, इसका वक्त तमाम हो जाएगा, फिर कब्र में अली को मुंह दिखाना है, फिर कब्र में जाना है, बात करें, इन्हें पेश किया जाए। अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है, अगर इन्होंने कोई नाइंसाफी की है, अगर इन्होंने कोई कानून शिकनी की है तो इन्हें उसके मुताबिक सजा दी जाए, इनको पेश किया जाए। इस तालीकी कैफियत में, इस गैर यकीनी कैफियत से निकालें इन बच्चों को, इन बीबियों को, इन सैदानियों को, इन अहले बैत के चाहने वालों को, इन मुसलमानों को, इन इंसानों को लाइए, उन्हें पेश कीजिए। मैं बीबी जैनब से शर्मिंदा हूं, मैं जनाब जैनब से शर्मिंदा हूं, उनके मजार पर, उनके मीनार पर मिसाइल लगा, मदीने मुनव्वरा में नबी का रोजा, नजफ अशरफ में मौला अली का रोजा, शाम में जनाब जैनब का रोजा। शायद पाकिस्तान की हुकूमत और सीरियन हुकूमत के दरमियान हम आहंगी नहीं थी, वरना जैसे पाकिस्तान की फौज मक्के की हिफाजत के लिए और मदीने की हिफाजत के लिए गई है, ऐसे उसे शाम बीबी जैनब के रोजे की हिफाजत के लिए भी जाना चाहिए था। सिर्फ एक अरब मुल्क को राजी करने के लिए और एक पागल सदर को राजी करने के लिए, लेकिन अगर कोई वहां गया तो उस मुल्क की कानून शिकनी उसने की होगी ना, वो सजा देगा ना उसे, उसने वीजा दिया था, वो वहां गया तो उस मुल्क की कानून शिकनी हुई है ना, जिस मुल्क के अंदर वो फर्ज करें वो गया भी है। और अगर वो पाकिस्तान पलट कर आ गया तो आपके कानून में कौन सी शिक है जिसके मुताबिक वो मुजरिम है, उसके मुताबिक उसे सजा दीजिए। मुझे तो आपसे पूछना चाहिए था बीबी जैनब के रोजे की हिफाजत के लिए क्यों नहीं गए, आप जाने वालों को उठा रहे हैं। आपने अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को बनाया, जब चाहा बनाया, जब चाहा बिगाड़ दिया। 82 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उसके नतीजे हैं जो आज निकल रहे हैं, और उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हमारी रियासत है, उसका जिम्मेदार हमारा मुल्क है। सन 1982 से लेकर 2015 तक याद कीजिए, सन 1982 वही कि जिस दौर में कराची में फसादात शुरू हुए, लाहौर में फसादात शुरू हुए, और 2015 जब पेशावर में स्कूल पर हमला होता है तो उसके बाद जो तदारुकात शुरू हुए, वो जो इतना बड़ा दौरानिया गुजरा, आपने छोड़ दिया इन लोगों को, खुद लड़े, खुद मारें, खुद एक दूसरे से उलझें, खुद एक दूसरे के गरेबान पकड़ें, कोई घूसा मारे, कोई लात मारे, कोई एक दूसरे को कत्ल करे, कोई एक दूसरे को छुड़वाए, आपने पूरे मुल्क को आजाद छोड़ दिया, जो जैसे चाहे रहे। हम पुकारते रहे कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, इस मुल्क में रियासत है या नहीं है, इस मुल्क में फोर्सेज हैं या नहीं है, इस मुल्क के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या नहीं। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, सर फोड़ते रहे, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमने इस मुल्क में 6 ऐसी खोपड़ियां पकड़ के दी जो हमारे इज्तमात में आकर वो फटे, उनके सर पकड़ के दिए। आप डीएनए टेस्ट के जरिए से बताते ना हमें कि वो कौन सी मंडी से आए थे, आप बताते ना कौन सी गोदाम से निकालकर उनको लाया गया था। आपने वो 6 अफराद भी गुम कर दिए, आपने वो रिपोर्टें भी हमें कभी पेश नहीं की। इस मुल्क में इतने बड़े बड़े हादसा सामने आए, इतने बड़े बड़े वाकयात पेश हुए, मगर कभी आपने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की, कभी नहीं बताया आपने कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कहां से आके कर रहे हैं, किन के ईमा पर कर रहे हैं, किन के पैसे पर कर रहे हैं, क्या वजह है इनकी इस अंदाज से दहशतगर्दी करने का। बहुत वाजे रहे बात, मैं एक मस्जिद के साय में खड़ा होकर तकरीर कर रहा हूँ, मस्जिद अल्लाह का घर है, चाहे देवबंदी की हो, शिया की हो, बरेलवी की हो, पाकिस्तान में सुन्नी शिया का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में सुन्नी शिया नहीं लड़े। आलमी सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान में मजहबी दहशत गर्दी की गई, यहां सुन्नी शिया का झगड़ा ही नहीं था। हम बड़े बड़े फोरमों पर एक दूसरे के साथ बैठते आए हैं, बैठे हुए हैं अभी भी, बर्दाश्त की फिजा हमारे यहां और मुल्कों से बहुत बेहतर है। आप जाके देखिए हिंदुस्तान में सुन्नी शिया की कितनी तनाव खिंचाव है, आप जाके देखिए इराक में क्या मसले हैं, आप जाके देखिए बांग्लादेश में कितना बुरा हाल है, पूरी दुनिया के शिया सुन्नी में जो तनाव खिंचाव है पाकिस्तान में उसका 5% भी नहीं है। और इसमें बड़ा किरदार उलमाए किराम का है, वो सुन्नी हो या शिया हो, वो बरेलवी हो या देवबंदी हो, बहुत बड़ा किरदार बनता है मुस्लिम उलमा का, मुसलमान उलमा का। उन्होंने अपने लोगों को लड़ने नहीं दिया कभी किसी मस्जिद के ऊपर, कोई इक्का दुक्का अगर वाकयात पेश आए तो उसके बाद भी खुल गया कि इसके पीछे साजिश क्या थी। हमारे मुल्क में सुन्नी शिया का इशू नहीं है, लोगों को बनाया गया, लोगों को तैयार किया गया, लोगों को आमादा किया गया, समझा गया कि शिया की गर्दन पतली से दबा लेंगे, मगर ये बेवकूफ हैं। हमारा तो अंदाज ही कुछ और है, हमें समझोगे तो PhD हो जाओगे, हमारा तो तरीका कार कुछ और है। हम जैसे जीते हैं ना ऐसे कोई और कौम जी नहीं सकती, हम तो तकलीफों में लुत्फ लेने वाले लोग हैं। तुमने इस मुल्क के अंदर हजारों जनाजे हमें दिए, मगर इन तमाम जनाजों के उठाने के बावजूद भी ना मजलिस बंद हुई, ना मातम बंद हुआ, ना जुलूस बंद हुआ। हम आज भी कानून के दायरे में रहते हुए इमाम हुसैन की अज़ादारी में मसरूफ़ रहते हैं। ये हुआ इस मुल्क में। अज़ीज़ाने गिरामी, आखिरी चंद जुमले सुनिए। हमारा मुतालबा पहला, ये जो अफराद गुम हैं, रियासत की जिम्मेदारी बनती है, पाकिस्तान के हिफाजती इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको ढूंढ कर लाएं। अगर कोई एक इदारा कहता है ये मेरे पास नहीं है, तो कोई दूसरा इदारा कहता है मेरे पास नहीं है, तो कोई एक इदारा तो है जो इन सारे इदारों पर इदारा है, वो इदारा बताए कि किसके पास है और कहां चले गए। क्या आसमान ने इन्हें उठा लिया, जमीन ने निकल गई, कहां चले गई है, इसी मुल्क में इन्हें पेश किया जाए और फिर कहा जाए। मैं फिर तकरार कर रहा हूं, हम बिल्कुल किसी जालिम के पीछे नहीं खड़े होंगे। अगर वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक जालिम साबित होगा, हम उसके पीछे नहीं खड़े होंगे। हमारा मुतालबा सिर्फ यह है कि इन सिसकती हुई, बिलकती हुई, रोती हुई माओं के आंसुओं को रोको। इन खवातीन अपने शोहरों के लिए जो रास्ता तक, ये बच्चियां जो दरवाजा तक रहे होते हैं, ये बच्चे कि अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं, इनके साथ जुल्म नहीं करो, इनके साथ ज्यादती नहीं करो। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती, कानून की सालमियत और इदारों की इसलाह के अमल को आज से ही शुरू करना है। हम अपने जवानों के वापस ले जाने पर इक्तफा नहीं करेंगे, हम अपने जवानों के वापस मिल जाने पर इक्तफा नहीं करेंगे, जिन्होंने दीवारें फांद कर घरों में घुसकर चार दीवारी की बेहुरमती की, बीवियों की बेहुरमती की, अब उन पर मुकदमा चलेगा। बलंदर सलावात मिल कर कहिए, मेरा तीसरा मुतालबा मैं फिर एक जुमला पहले कह दूं कि पहले हमें समझ लो कि हम किस मिजाज के लोग हैं। हम बूजरी हैं, कंबरी हैं, हमारा मिजाज कुछ और है, हम कुछ और लोग हैं। हमें पहले समझने की कोशिश करो। शियत एक तहजीब का नाम है, शियत एक मजमू अकदार का नाम है। हमें समझो, छोटी बातों में, हल्की बातों में हमें नहीं उलझाओ। ये जो तुमने बसों को और बसों के ड्राइवरों को उठा लिया है कि जिसकी बुनियाद पर फिर हम पर इसरार बढ़े और फिर हमसे कहा जाए कि कोई और पहले बात कर लो, तो ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये तुम्हारी गलत फिक्री है। ऐसा नहीं होगा, बहुत हल्के हैं, बहुत ही गैर मयारी हटकंडे अपनाए जा रहे हैं। लोगों को रोका जा रहा है, बसों को पकड़ा गया है और ड्राइवरों को उठा लिया गया है। और वो शायद बाज उनमें तो ऐसे थे जो स्कूलों के अंदर बच्चों की वैन और बच्चों की सर्विस के तौर पर वो गाड़ियाँ इस्तेमाल में आती थी, उनकी नौकरियाँ थी उसमें, लिहाजा और बच्चों के इम्तहान हो रहे हैं इस वक्त। तो इस तरीके से हम पर दबाव डालने वाली बात, ये वाली बात तो होनी नहीं है। तो मैंने ज़िमन अर्ज़ कर दिया कि इस तरह के काम जो है वो हमें पता है कि ये मुल्क है, यहाँ किस अंदाज से सियासत की जाती है। ये जो हमारे अफसरान हैं ना, अल्लाह इनको और तरक्की दे, जो 17वें ग्रेड का अल्लाह उसे 19वां दे दे, उसे 21वां दे दे, इन्हें वो नीपा ट्रेनिंग जो दी जाती है, हम उससे ज़्यादा ट्रेनिंग जानते हैं। हमें पता है कि इनको वहाँ क्या सिखाया जाता है, कि कैसे लोगों को घेरा और घोटा जाए और कैसे लोगों को बोतल में उतारा जाए। इनको सिखाया जाता है इन अफसरान को। तो वो जो आपको सिखाते हैं ना, उन्हें हम सिखाते हैं। हम नहजुल बलागा पढ़ने वाले लोग हैं, हम निज़ाम हुकूमत और निज़ाम हाय हुकूमत चलाने का ज़्यादा बेहतर तजर्बा रखते हैं। दुनिया में इस्लाम के नाम पर अगर कामयाब कोई हुकूमत चल रही है तो वही चल रही है जहाँ अली उन वलीउल्लाह पढ़ा जाता है। हमने कामयाब तजर्बा करके दिखाया दुनिया में, हमारे बुजुर्गों ने कामयाब तजर्बा करके दिखाया। मैं आखिर में आप सब से कहूँगा, चलिए कुछ देर के लिए करबला चलिए, अपने जहनों को करबला में चलिए। मैं इन बहनों से कहूँगा कि आपका भाई नहीं मिल रहा, इन माओं से कहूँगा आपका बच्चा नहीं मिला, ये छोटी बच्चियाँ जो बैठी हैं, तुम्हारे बाबा नहीं आए, सलाम हो सकीना बिंतुल हुसैन पर, जुलजना जब खबर शहादत पहुंचाने आया ना, वो जनाब जैनब के खेमे पे नहीं गया। जुलजना खबर शहादत पहुंचाने के लिए जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे फरवा के खेमे पर नहीं गया, उम्मे लैला के खेमे पर नहीं गया। जुलजना उस खेमे को ढूंढता हुआ आगे बढ़ा जहां सकीना थी, और खेमे के बाहर खड़े होकर पैर मारने लगा जैसे मातम कर रहा हो। सलाम हो उस बच्ची पर, मैं इन बच्चियों से कहूंगा जरा अपने जहनों को ले जाओ, करबला ले जाओ। सलाम हो उस हुसैन की शहजादी पर, 4 साल का सिन है, इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए, 2 कदम आगे बढ़ी, घोड़े की गर्दन पे हाथ रख के फरमाया, इतना बता पानी पिला के मारा। मेरा बाबा प्यासा बहुत, जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जब आपकी आवाजें बुलंद होती है ना, इसी जगह बुलंद आवाज से रोइए। हुसैन इब्न अली का शायद ये जगह रह गई थी जहां पुरसा नहीं हुआ था आज तक। ये इसके पीछे भी रूहानी मसाइल होते हैं, क्या मालूम हुसैन खींच कर लाए। आज तक इस गली में मेरा जिक्र नहीं हुआ है, आओ यहां मजलिस करो बैठ के। मैं उन माओ को भी पुरसा देना चाहूँगा, हिम्मत देना चाहूँगा, हौसला देना चाहूँगा कि जिनके बच्चे उन्हें किसी को 2 साल से, किसी को 6 महीने से, किसी को 3 साल से नहीं देखा, सलाम हो उम्मुल बनीन पर। रोज़ाना जन्नतुल बकी जाती हैं, अपनी अंगुश्ते शहादत से 4 कब्रों के निशान बनाती हैं और 4 कब्रों पे 4 बच्चों के नाम अपनी उंगली से लिखती हैं और कहती है ला तदोनी उम्मुल बनीन, मुझे उम्मुल बनीन नहीं कहा करो, इसलिए कि उम्मुल बनीन तो बेटों की मां को कहा जाता है। मेरे वो बेटे कहां हैं, वो करबला में सो गए मेरे लाल। अजरुकमल अल्लाह, मुझे 2 मंजिलें और लेनी है, मुझे एक बहन को भी फुर्सत देना है। बैठी हैं ना बहनें, बैठी हैं ना, भाई भी बैठे हुए हैं। भाई का हौसला देना है, ये जहन में रहे, ये जहन में रहे। हम शहादत को सआदत जानते हैं मगर जिल्लत हमें गवारा नहीं है। मैं बहनों से मुखातिब हूँ, कुछ देर के लिए तसव्वुर कीजिए एक बहन भाई के पास आई है, पहचाना नहीं जा रहा था भाई का लाशा। सुनेंगे, इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी, 10 घोड़े दौड़ाए थे हुसैन के बदन पर। लाशे को कभी पाइती आकर देखती थी, कभी सिरहाने आकर देखती थी। इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा क्या देख रही है? फरमाने लगी, सालिम जगह ढूंढ रही हूं जहां बोसा दे सकूं। जनाबे जैनब को जब भाई के बदन पे कोई सालिम जगह नजर नहीं आई तो कटी हुई रगों पर लब रख दिए, बोसे ले लेकर मदीने रुख किया, नाना मैं हुसैन के गले का बोसा ले रही। फिर बैठ गई अपने भाई के बराबर में और जारो कतार मेरी बीवी रोने लगी कि इमाम सज्जाद की आवाज आई, फूफी अम्मा पाले मैं गैर मौलिमा है, हौसला कीजिए। फरमाने लगी, जैनुल आबेदीन देख रहे हो मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है, आपको नहीं पता ना आपका भाई वहां जहां पर भी है उसे धूप में रखा हुआ है, उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं, उसे किस कोठड़ी में रखा हुआ है, उसे किस तकलीफ में रखा हुआ है, याद कीजिए ना क्या गुजरी है जनाबे जैनब पर। फरमाने लगी, जैनुल आबेदीन तुम देख रहे हो मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है? हाँ फूफी अम्मा, बाबा के बदन पे धूप है। फरमाया, मैं 3 साल की थी, अपने घर के सहन में सो रही थी, कुछ देर के बाद मैंने देखा कि सारे सहन में धूप आ गई है मगर मेरे ऊपर साया था। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ, ये साया कैसा है? जब मैंने पहलू बदल के देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े खड़ा था कि कहीं मेरी बहन पर धूप ना आ जाए। अब बताओ ये जहन अब कहां जाए? मेरे सर पे चादर नहीं है, हुसैन के बदन पे कपड़ा नहीं है। या अल्लाह, तुझे ज़ैनब की फरियादों का वास्ता, या अल्लाह तुझे सकीना की सस्तियों का, या अल्लाह तुझे जनाब रबाब के धूप में बैठने का, ए अल्लाह तुझे हजरत इमाम सज्जाद की बेड़ियों का वास्ता, हाजतमंद हैं इनकी हाजतों को पूरा करो।